इस संदेश की श्रृंखला को डॉक्टर बिल माउंस के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसका नाम है बाइबल की 52 मुख्य घटनाएं। और अधिक सामग्री के लिए आप कृपया जाएं www.biblicaltraining.org पर। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। पवित्र शास्त्र की प्रेरणा। अफसुस में समस्या थी। प्रेरितों के काम 21 में पॉलस की भविष्यवाणी सत्य हुई। कलीसिया के अगुवे भटक गए, बेड़िए बेड़ों पर हमला करने लगे और प्राचीनों का व्यवहार दोषपूर्ण था। उनकी शिक्षा दोषपूर्ण थी, इसलिए पॉलस तिमोथियस को भेजता है ताकि समस्या का समाधान हो सके। इसलिए वह तिमोथियस की पहली पत्री लिखता है ताकि वह उसे और ज्यादा निर्देश दे सके। और अंत में पॉलस दूसरी तिमोथियस की दूसरी पत्री लिखता है और समस्या में उसकी मदद करने के लिए अंत में वह उसे कहता है कि आखिर मुझे मिल। तिमोथियस की दूसरी पत्री में विशेष तौर पर अध्याय 3 में पॉलस को भलाई के बारे में बताता है कि जिसे तिमोथियस अनुभव कर रहा है। और मैं इस अध्याय 3:14 को बताना चाहता हूं जहां पॉलस लिखता है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं विश्वास किया कर और यह जानकर दृढ़ बना कि तूने किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह में विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा। और उसके प्रकट होने और राजा की शुद्धि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। एफसस में समस्याओं के बीच में और झूठी शिक्षा के बीच में जो चल रही है, पॉलस तिमोथियस से कहता है कि पवित्र शास्त्र से चिपका रह ताकि इसे अपनी सेवकाई का केंद्र बना सके। वचन 16 केंद्रीय खंड है और प्रेरणा के सिद्धांत के लिए हम पवित्र शास्त्र के बारे में क्या सोचते हैं। सभी धर्मशास्त्र परमेश्वर द्वारा फूंका गया है। आइए हम इस वचन से अलग अलग हिस्सों को देखें। सभी धर्मशास्त्र पूरी बाइबल परमेश्वर के मुख से निकला है। इसका हर एक छोटा अंश और एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक जय परमेश्वर का ही वचन है। यही है हमारी प्रेरणा की शिक्षा। इसलिए जब हम कहते हैं कि संपूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वर की तरफ से है, इसमें विश्वास करने के लिए आसान भाग शामिल है। बाइबल में कई ऐसे आसान भाग हैं जो विश्वास दिलाते हैं कि सारा धर्मशास्त्र परमेश्वर की तरफ से है और सत्य है। वो भाग जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो भाग जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर हमारी परवाह करता है, वो भाग जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें बनाए रखता है, ये आसान भाग नहीं है। सामान्य तौर पर जिन्हें हम विश्वास करते हैं ये परमेश्वर की तरफ से है। परंतु जब हम कहते हैं कि संपूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वर की ओर से है, इससे कठिन भाग भी शामिल है कि यह नहीं है। हो सकता है आपके जीवन के हालात में ये विश्वास करना कि परमेश्वर आपकी परवाह करता है जबकि हालात इसके विपरीत हों, तो विश्वास करना बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं कि संपूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वर की तरफ से है। और इसके साथ और भी कई कठिन भाग हैं और ये कठिन भाग जो दावा करने के लिए कहते हैं कि लेकिन वे विज्ञान और इतिहास के विपरीत हैं। हमें जो कुछ भी स्कूल में सिखाया गया, हमें उस पर विश्वास करने के लिए कहा गया है, फिर आप और मैं विकास मूलक तुर्केबाज बन गए हैं। लेकिन हम फिर से विश्वास करते हैं कि उत्पत्ति 1 अध्याय परमेश्वर की तरफ से है और सत्य है कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है और उसने आदम और हवा की रचना की है। लेकिन कई बार मुश्किल भाग, जैसे कि धर्मशास्त्र इस बात का दावा करता है कि परमेश्वर मुश्किल हालात में भी अपनी भलाई पैदा कर सकता है, मुश्किल हालात में आपको और मुझे आनंद मनाना चाहिए। धर्मशास्त्र के कुछ भाग विश्वास करने के लिए कठिन है कि वे नहीं है, लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के मुख से ही निकला है। हम विश्वास करते हैं कि पुरुष परिवार में शादीशुदा जीवन के सिर हैं, लेकिन समाज कोशिश कर रहा है कि हरेक पुरुष नपुंसक बनाने की कोशिश कर रहा है और उन्हें कमजोर और बेवकूफ पेश कर रहा है। कल रात मैंने टीवी पर एक विज्ञापन देखा जो कि इतना भद्दा और ठेस पहुंचाने वाला था। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। पुरुष तो अपने बच्चों के नाम भी याद नहीं रख सकते, वह उनकी दिलचस्पियों और शौक भी नहीं जानते हैं। इसलिए अगर उन्हें सेलफोन मिल जाए तो वह उनसे संपर्क में रहेंगे और वह बच्चों के नाम भी याद रखेंगे। यही तो पुरुषों संसार आपको बताता है कि आप बेवकूफ और निर्बुद्धि हैं। बाइबल कहती है कि आप मजबूत हैं और आप परिवार और शादीशुदा जीवन के सिर हैं। ये कुछ मुश्किल भाग हैं, लेकिन हम फिर भी विश्वास करते हैं कि धर्मशास्त्र सत्य है। क्या हम नहीं करते कठिन और आसान भाग? धर्मशास्त्र, सारा धर्मशास्त्र परमेश्वर के मुख से निकलता है। और धर्मशास्त्र से पौलुस का क्या अर्थ है? शुरुआत से यह तो स्पष्ट लगता है। पीछे 15 वचनों में पौलुस पवित्र लेखों के बारे में लिखता है कि तिमोथियस ने बचपन से ही पवित्र लेखों को उसने बचपन से ही जाना है। हम जानते हैं कि तिमोथियस का पिता एक यूनानी था, लेकिन उसकी माता और नानी यहूदी थी। स्पष्ट रीति से तिमोथियस को एक अच्छे यहूदी बालक के रूप में बड़ा किया गया था। इसलिए हम जानते हैं कि पवित्र लेख पुराना नियम है। लेकिन आप देखिए कैसे पौलुस अपनी बात को याद रखता है। पवित्र शास्त्र तेरा जाना पहचाना है, जो तुझे यीशु मसीह में विश्वास के जरिए बुद्धिमान बना सकता है। ये यीशु का संदेश है, यही तो प्रेरितों की शिक्षा का संदेश है, यही तो गवाही है, जिसे आज आप और मैं नया नियम कहते हैं। हालांकि इसमें से कुछ हिस्सा पौलुस के बोलने के समय भी लिखा नहीं गया था, लेकिन जब हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर से मुख से निकला है, तो यह पुराना नियम और नया नियम दोनों अलौकिक रीति से प्रेरित हुए हैं, परमेश्वर द्वारा फूंका गया। अगर आप ESV के साथ परिचित नहीं हैं, तो अगला पद आप अजीब समझकर अटक जाएंगे कि हम विश्वास करते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर द्वारा फूंका गया है। पुराने अनुवाद में प्रेरणा शब्द इस्तेमाल हुआ है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा दिया गया है। समस्या ये है कि इंग्लिश भाषा का शब्द प्रेरित बदल चुका है, और आज इसका अर्थ वो नहीं है जो किंग जेम्स के समय में हुआ करता था, और इसका अर्थ वह तो कदापि नहीं है जो यूनानी में कहा गया है, क्योंकि आज बहुत सी चीजों के बारे में हम बात करते हैं जो प्रेरणा देती हैं। क्या हम नहीं जानते मेरा 9 साल का बेटा गारफील्ड द्वारा प्रेरित है? वह दीवानगी के साथ गारफील्ड से लगाव रखता है। उसके कमरे की दीवारें गारफील्ड के कार्टूनों से बड़ी बड़ी हैं। वह गारफील्ड को मिलने वाली हर एक पुस्तक को पढ़ता है। उसकी पुस्तकों वाली अलमारी गारफील्ड की पुस्तकों से भरी हुई है। असल में उसने गारफील्ड की पुस्तकों से ही पढ़ने की आदत बनाई। हेडन गारफील्ड को वह बहुत पसंद करता है, वह उसके द्वारा प्रेरित है। लेकिन यह वो नहीं है जो पौलुस बताता है। बाइबल प्रेरणा देती है, लेकिन वह यह नहीं है जो दूसरा तिमोथियस 3:16 में सिखाती है। इस बात की सच्चाई है कि धर्म शास्त्र अनुपम है। जिस रीति से यह हमें मिला वह भी अनुपम है। ना तो यूनानी में और ना ही इंग्लिश में ऐसा कोई शब्द है जो सही रीति से इसकी व्याख्या कर सके। इसलिए पौलुस वही करता है जो वह अक्सर करता है, वह शब्द बनाता है। पौलुस हर स्थान पर शब्द बनाता है, इसलिए पौलुस ने परमेश्वर के लिए शब्द लिया, फिर उसने फूंकने के लिए शब्द लिया, और उन दोनों को एक साथ चिपका दिया, और उसने कहा संपूर्ण पवित्र शास्त्र थियोनोटोस्टोस है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर द्वारा फूंका हुआ है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के द्वारा फूंका गया है। प्रेरणा के बारे में पत्रस इसे थोड़ा अलग रीति से कहता है। वह दूसरा पत्रस 1:20-21 में जहां पर पत्रस कहता है कोई भी भविष्यवाणी किसी भी व्यक्ति की समझ से नहीं आती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी किसी भी व्यक्ति की इच्छा के द्वारा नहीं आई है, लेकिन उसने वही बोला जो पवित्र आत्मा ने उसे बोलने के लिए उकसाया। यह है धर्मशास्त्र के प्रेरित होने की शिक्षा। उसने इसे फूंका और ये उसके मुख से ही निकला है कि ये परमेश्वर की तरफ से ही है। 2 अप्रत्यक्ष बिंदु। अब इस विषय को समझे जाने वाले 2 बिंदु हैं जो कि अप्रत्यक्ष हैं, लेकिन मैं ये कोशिश करना चाहता हूं कि सब कुछ स्पष्ट हो। सत्य, पहली बात, कोई भी धर्मशास्त्र के मुख से निकलता है इसलिए यह सत्य है। वह इसे कहता है नहीं है, लेकिन इस खंड में अनुमान लगाता है। परमेश्वर सत्य है और जो कुछ वह कहता है वह भी सत्य है, आधिकारिक। दूसरी बात, क्योंकि धर्मशास्त्र परमेश्वर के मुख में से निकलता है इसलिए वह आधिकारिक भी है। क्योंकि धर्मशास्त्र परमेश्वर के मुख में से निकलता है इसलिए यह अपने साथ परमेश्वर का अधिकार लेकर चलता है। धर्मशास्त्र के पास अधिकार है कि वह हमारे धर्म सिद्धांत पर भी अधिकार की मांग करता है। क्या हम विश्वास करते हैं? हमारा व्यवहार, हम कैसे कार्य करते हैं? असल में यही इसी बात का आज्ञा पालन में लाने वाली बात है जिसके बारे में पौलुस इस खंड में बात करता है। क्योंकि धर्मशास्त्र परमेश्वर के मुख में से निकलता है यह सत्य और आधिकारिक है। मैं जानता हूं कि यह हमारे हृदयों में आमीन कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ हाँ, यही तो मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन मैं हमेशा इस पर हैरान होता हूँ कि हम सचमुच हमेशा इस पर विश्वास करते हैं कि संपूर्ण धर्मशास्त्र उस परमेश्वर के मुख में से निकला है जो रचाता है, बचाता है, सबकी रक्षा करता है। जब मैं किसी प्रचारक को उसके अपने ही विचार को प्रचार करते सुनता हूँ, जब मैं किसी प्रचारक को अपने विचार लेकर उन्हें परमेश्वर के विचारों के तुल्य बनाकर पेश करते हुए देखता हूँ, उसमें मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ वह एक ईश निंदक है। वह यह विश्वास नहीं करता कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है, यह उसके ही मुख से निकला हुआ है। क्योंकि अगर आप सच में विश्वास करते हैं कि धर्मशास्त्र परमेश्वर के मुख से निकला है, तो आप अपने विचार परमेश्वर के विचारों के तुल्य समझकर उनके साथ नहीं जोड़ेंगे। आप अपने विचार उसके विचारों के साथ नहीं मिलाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे, परमेश्वर यह कहता है, लेकिन उसमें से निकलता है। बिल यह कहता है, ऐसे समय जरूर आएंगे जब हमें अपनी राय देनी पड़ती है, हम उसे पूरी ईमानदारी के साथ पेश करेंगे। कई बार ऐसे समय आते हैं जब हमें व्याख्या देनी पड़ती है, और जब हम व्याख्या में गलती करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि यह गंभीर बात है। लेकिन मैं किसी और सारांश पर नहीं आ सकता। अंत में लोग जब अपने विचार प्रचार करते हैं, वे ईश निंदक हैं। वे यह विश्वास नहीं करते कि संपूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वर की ओर से आया है। मुझे नहीं पता कि क्या सारांश करूं, लेकिन यह सिर्फ पास्टर नहीं है। जब मैं लोगों को यह कहते सुनता, ओ हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि धर्मशास्त्र परमेश्वर की ओर से है, लेकिन फिर वह धर्मशास्त्र की स्पष्ट शिक्षा के विपरीत बात पर विश्वास करते हैं, मुझे अपना सिर खुजाना पड़ेगा और कहना होगा, क्या यह सचमुच बाइबल कहती है व्यभिचार का एक अंश भी हमारे अंदर नहीं पाया जाना चाहिए, Ephesians 5:3। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम यह विधि समस्त लाइव देख लेते हैं। ठीक, मैं कितनी दूर जा सकता हूँ, विचार ये नहीं है कि मैं इससे कितनी दूर जा सकता हूँ, जितना के संभव है, लेकिन बात यह है कि जितना उसके समाप्त करने के पास मैं जा सकता हूँ, मुझे जाना चाहिए और मुझे कहना चाहिए, क्या हम सचमुच यह विश्वास करते हैं, जिसने मुझे जीवन दिया वो जब चाहे इससे ले सकता है। क्या कहता है कि तुम अपने अंदर व्यभिचार का अंश भी ना हो। क्या हम सचमुच विश्वास करते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के मुख से निकला है? क्या तुम सचमुच विश्वास करते हो? मैं सोचता हूं कि वास्तव में यह भी अनूठा सवाल है कि हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या तुम यह विश्वास करते हो? अगर आपके बच्चे हैं, क्या वे यह इस पर विश्वास करते हैं? सचमुच क्यों? मेरे साथ एक अशांत कर देने वाली जो घटना हुई, एक बार स्नातकना पर मैं एक विश्वविद्यालय में 6 सालों के लिए पढ़ा रहा था। मेरा एक विद्यार्थी था जिसका नाम मटर था। 4 साल पहले हमने एक बार नए नियम की कक्षा में प्रेरणा पर बात की थी। फिर मैं मटर से 4 साल नहीं मिला। मैं स्नातकता में वह स्नातकता पढ़ रहा था। मैं दक्षिणी कैलिफोर्निया में सारी सुबह उन काले लिबासों में बैठे रहे और उन काले टोपों को पहनकर हम विद्यार्थियों को उत्साहित कर रहे थे कि मैं गर्म हो रहा था और मैं गर्मी से बहुत नफरत करता हूं। और जब मैं समाप्त हो गया, मैं भागकर अपने दफ्तर गया। मैंने अपना चोगा और टोपी अपने बैग में डाल दी और मैं देखना चाहता था कि यह किसके हैं। मैं सिर्फ घर जाना चाहता था और अपनी गर्मियों की छुट्टियों को शुरू करना चाहता था। एक जगह मटट ने मुझे एक घर दिखाया। वह मुझसे कोई बात करना चाहता था। मैं अक्सर बात करना पसंद नहीं करता। उसने अपने मुख में से सवालों की जड़ी लगा दी और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर में ये किधर जा रहा है। वो जा रहा था कि अब मुझे फिर से बताओ कि मैं क्यों विश्वास करता हूं कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की ओर से है। मैं सिर्फ इतना ही सोच सका कि मटर, तुमने ये सवाल 4 साल पहले क्यों ना पूछा, जब तुम्हारे आसपास टीचर थे जवाब देने के लिए, आपके मित्र थे जो आपकी सोचने में विचारने में मदद करते, ताकि आप भी उनकी सेवा में आते। लेकिन स्नातकता में कुछ हुआ जे जानते हुए कि वह असली संसार में जा रहा है, जहां उसका जीवन चुनौतीपूर्वक होगा। वह उदास था, सहमा हुआ था। उसे नहीं पता था कि यह विश्वास चुनौतीपूर्वक होगा। उसे नहीं पता था कि यह विश्वास कैसे कर लिया कि बाइबल सत्य है। मैं आशा करता हूं कि इसमें से हर कोई यह सवाल पूछे। यह साधारण सा अनुभव है। असल में यह एक जरूरी और अच्छा सवाल है। तिमोथियस ने ऐसा क्यों किया और मैं ये विश्वास क्यों करता हूं कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर के मुख से ही निकला है? क्योंकि अगर आप ये सवाल आपके लिए नहीं उठाएंगे, तो आप कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि बाइबल सचमुच सत्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप धर्मशास्त्र पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे, ना ही आप विश्वास को विरासत में ले पाएंगे, और ना अपने माता पिता और रविवार के स्कूल के टीचरों या फिर लोगों को जिन्हें प्रभु ने इस्तेमाल किया आपको अपनी तरफ खींचने के लिए, उन्हें विश्वास को जो उन्होंने अपने ऊपर सिखाया। आप क्यों सोचते हैं कि धर्मशास्त्र सत्य है? हाँ, यह खंड पढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत से सवालों के उत्तर हैं। एक उत्तर जब वह पौलुस तिमोथियस के स्मरण करवाता है कि धर्मशास्त्र तेरे बचपन से जाना हुआ है, और जय तुझे उन लोगों को सिखाना है जिन्हें तू भरोसा करवाता आया है। इस कारण मैं क्यों विश्वास करता हूं कि बाइबल सत्य है, क्योंकि मैंने यह उनसे सीखी है जिन पर मैं भरोसा करता था। और तिमोथियस की महान माता थी, महान नानी थी, और पॉलस के रूप में एक महान पिता थे, और यह वे लोग थे जिन पर वह भरोसा करता था। इसलिए उसने जब उन्हें सिखाया कि संपूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वर के मुख से निकलता है, तो उसने इस बात पर विश्वास कर लिया। मैं अपनी बेटी क्रिस्टन को बात करते हुए याद करता हूं। जब वह 10 साल की थी, वह बात करते हुए मेरे पास आई और उसने मुझे पूछा कि क्रिस्टन, तुम क्यों विश्वास करती हो कि बाइबल सत्य है? और वह बिना पलक झपके मेरी तरफ देखने लगी और बोली, क्योंकि आप और मम्मी विश्वास करते हो। मैंने सोचा कि यह कितना बढ़िया उत्तर है, एक 10 साल के बच्चे के लिए कितना गहरा है और भरोसेमंद उत्तर है, क्योंकि यह भी एक कारण है कि हम क्यों विश्वास करते हैं। यह क्या यह नहीं है? कई महीने पहले टेलर मेरे पास आया और हम बात कर रहे थे। टेलर 15 साल का है और उसने बात कही। उसने कहा, आपको पता है कि मैं मसीही क्यों बना? क्योंकि मैं आप पर और मम्मी पर भरोसा करता हूं। यह वो परिवार है जिसमें मैं बड़ा हुआ हूं और यह मेरे लिए अर्थपूर्ण है। मैं अपने इस झुंड पर विश्वास करता हूं। लेकिन उसने कहा, लेकिन मैं उस स्तर पर जाना चाहता हूं जिस पर मुझे यह पता चल सके कि मेरा विश्वास ही है, और मैं यूं ही विश्वास नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आपने ये सब बातें मुझे बताई हैं। मैं आगे बढ़ा, वाह, यह बिल्कुल सही है टेलर, यह बिल्कुल सही है। कितनी बढ़िया बात एक 15 साल के बच्चे द्वारा कहने के लिए। इसलिए मैंने पहला कारण बताया कि क्यों तिमोथियस और मैं विश्वास करते हैं कि धर्मशास्त्र सत्य है, लेकिन किसी प्रकार यह विश्वास करते हैं कि यह सत्य है क्योंकि हम लोगों पर भरोसा करते हैं जिन्होंने हमें सिखाया। फिर एक बच्चे के लिए यह बढ़िया उत्तर है, ना कि एक जवान के लिए। पॉलस ने जहां पर दूसरा कारण बताया कि क्यों तिमोथियस ने विश्वास किया कि धर्मशास्त्र परमेश्वर के मुख से निकला है, यह इंग्लिश की कहावत में छिपा है, पक्का विश्वास किया गया। पॉलस जो तिमोथियस को कहता है वह यह है कि तू अपने जीवन यात्रा में इस बात को अच्छी तरह से जान गया है कि धर्मशास्त्र सच्चा है और बाइबल बताए गए सत्यों को तू अपने जीवन में जी चुका है, और तुम्हारा अनुभव इस बात पर स्थापित हो गया है कि जो बाइबल कहती वह सत्य है। दूसरे शब्दों में, धर्मशास्त्र अपने आप को सत्य ठहराता है, वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा होता है। लेकिन यह ऐसा है कि जैसे यीशु ने यहूदियों को कहा कि अगर तुम इस पर विश्वास करते हो तो मेरे कार्यों के आधार पर विश्वास करो, दूसरे शब्दों में उनकी स्वयं की सत्यता की भी धर्मशास्त्र में हो जाती थी। अब विचार यह है कि जैसे आप जीवन यात्रा में से निकलते हैं तो आप उन सब बैटन को लेना चाहते हैं जो आपने इस अद्भुत पुस्तक में पढ़ी हैं, और आप इसे अपने जीवन में लागू भी करना चाहते हैं, लेकिन जो आपके लिए कोई अर्थ नहीं बनती, जो पूर्ण चक्कर बनता है, आपको पता है क्या, या देखने में सही विचार नहीं लगा, पर अपने जीवन के अनुभव में ये मैं सही जान पाता है। इस प्रकार आप और मैं पूर्ण रूप से समझ जाते हैं कि धर्मशास्त्र सत्य है। मैंने व्यक्तिगत अनुभव में धर्मशास्त्र में कभी अपमानित नहीं होने दिया। मैं जानता हूं कि अभी कुछ और सत्य भी हैं जो मेरे जीवन में पूरा होने में समय लेंगे, और विशेष तौर पर उन खंडों को जिनको आप पहली बार पढ़ते हैं। अभी कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि धर्मशास्त्र सत्य है, इसलिए मैं कठिन बातों का विश्वास करूंगा और उन्हें अभ्यास में लाऊंगा और उनका अनुभव करूंगा जो पूरा होगा। धर्मशास्त्र के वचन अपने आप को सत्यता करते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे नहीं पता आपके पास यकूब 1:2 है या नहीं। एक लंबे समय तक मेरी बाइबल सिर्फ एक यकूब 1:1 और 1:3 और फिर 1:4 तक ही चली गई, क्योंकि 1:2 तो बेतुकी सी बात है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। यह जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। हाँ, बिल्कुल सही यकूब, जैसे कि तुम कई बार उस दायरे में रह चुके हो, दुख के समय में आनंद करो। हाँ सही है, मान लो कि आपकी दो बेटियां हैं और वो मर गई, फिर इस वचन को पढ़ो और विश्वास करोगे यह सत्य है। लेकिन मेरी बेटी रेचल के मरने के 17 साल बाद भी, मेरी बेटी रोज के मरने के 18 साल बाद भी मैं समझ गया कि यकूब सत्य कहता है, हालांकि यह बाइबल का सबसे बेतुका वचन है। यह अपने आप में जीवन के अनुभवों में बाइबल को सत्यातित करती है। कोई भी पुस्तक नहीं है जो ऐसा करती हो। मेरे अनुभव में धर्मशास्त्र मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देता है, हालांकि सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। इसमें सभी सत्यों को लेना होगा, इन्हें अभ्यास में डालना है। जब आप उसको देखते हैं जो संसार कहता है, और जो संसार कहता है कि वह सच है, तो आप उस सच को अपने जीवन में जीने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आप उस सत्य को जो परमेश्वर कहता है कि उससे अलग है, यह सत्यातित करने में असफल हो जाता है। यह सत्य संसार कहता है, आप जो परमेश्वर के वचन का सामना करता है, तो यह हमेशा गलत साबित होता है। आप सोचते हैं कि हमें यह बाद में समझ आएगा क्या आप ऐसा नहीं करते? जब आप बार बार इसके साथ छल कपट होता है तो क्या आप चिढ़ नहीं जाते? कल मैं बिन संस्कृति की सेवकाई में शामिल था, एक मॉल में गया, वाह, एक कलीसिया के जैसे सुरक्षित आदमी, क्या अजीब संसार है। मैं बैठ गया और मेरा ध्यान एक पोस्टर की तरफ चला गया। मैं वहां से अपना ध्यान नहीं हटा पाया क्योंकि यह एक विज्ञापन था जो कि एकदम अश्लील था, यह पूर्ण अश्लीलता थी और यह अभी तक मेरी स्मरण शक्ति में बैठा हुआ है जब मैं पिछली बार मॉल में गया था। आपके अनुभव में क्या कभी आप अश्लीलता से संतुष्ट हुए हैं? इसका उत्तर है नहीं। इसलिए बाइबल कहती है, व्यभिचार का अंश भी तुम्हारे जीवन में ना हो। और जीवन के अनुभव में अश्लीलता एक झूठ है, बाइबल सत्य है, इसलिए मैं इस पर विश्वास करता हूं। जीवन के अनुभव में यह अपने आप को सत्यतित करती है। और भी कई कारण है जिन्हें मैं तीसरे नंबर पर डाल रहा हूं, जो व्यक्तिगत है, यह एक विचार है और यह आत्मिक भी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा जो बताने के लिए जरूरी है इसलिए बता रहा हूं। और कारण भी हैं जिनकी वजह से मैं विश्वास करता हूं कि धर्म शास्त्र सत्य है और यह परमेश्वर के मुख से निकला है, यह अर्थपूर्ण भी है। संसार के झूठ पर यकीन करने के बजाय धर्मशास्त्र के सत्य पर विश्वास करना ज्यादा तर्कमान है। जीवन के कुछ अहम सवालों को देखें, सृष्टि को देखें, देखें कि हम कहां से आए हैं। आप महान धमाके के सिद्धांत को पढ़ सकते हैं जो आपको चाहिए, लेकिन महान धमाके को भी तो किसी चीज के साथ शुरू होना हुआ होगा, या किसके साथ शुरू हुआ? हम कहां से आए हैं? आप हमारी रचना को कैसे व्याख्या करेंगे? आप इस संसार की रूपरेखा की तस्वीर को कैसे व्याख्या करेंगे? जब आप आकाश गंगा या कोशिका या पहाड़ पर पेड़ की तस्वीर देखते हैं, आप हर जगह पर रूपरेखा को देखते हैं। आप इन सभी की कल्पना एक चित्रकार के बिना कैसे कर सकते हैं? आप इन सब चीजों को कैसे देख सकते हैं जब एक अच्छे और सुंदर रूप की परिकल्पना के साथ है? आप इन सब की व्याख्या कैसे करेंगे? पवित्र शास्त्र की व्याख्या मेरे लिए अर्थपूर्ण है। परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर सब वस्तुओं की समझ मेरे अंदर डाली है, उसने मेरे अंदर भी समझ डाली है जो सुंदर है। उसने मेरे अंदर एक इच्छा पैदा की है कि मैं उसकी आराधना करूं। मनुष्य की आत्मा को संगीत किस प्रकार झूमने लगा देता है, ठीक है, इसी प्रकार विकासवाद का सिद्धांत बताता है कि जाग इकट्ठी हुई और फिर अचानक से डीएनए बन गया। मूर्खता, मूर्खता। परमेश्वर ने मेरे मन में संगीत का विचार डाला क्योंकि इसके बिना मेरे मन में आराधना का वैसा भाव नहीं आएगा जैसा कि आना चाहिए। यह है धर्मशास्त्र के उत्तर जो किसी अन्य चीज से बेहतर अर्थ रखते हैं। धर्मशास्त्र ऐतिहासिक रूप से सही है, यह आंतरिक रूप में भी लगातार रहता है, यह पूर्ण हुई भविष्यवाणियों से भरा हुआ है, यह मेरे लिए अर्थपूर्ण है, यह उन सभी बातों में परिपूर्ण है जिससे मुझे लगता है कि यीशु मोहम्मद से बढ़कर है। यीशु मेरे लिए जोसेफ स्मिथ से बढ़कर अर्थपूर्ण है। यीशु मेरे लिए मैरी बेकर एडी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्मशास्त्र उस यीशु की कहानी है जो मेरे लिए अर्थपूर्ण है। इसलिए नंबर 3 कि मैं क्यों विश्वास करता हूं धर्मशास्त्र सत्य है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि यह अर्थपूर्ण है और इससे बढ़कर मुझे किसी और बात में तुक नजर नहीं आता है। नंबर 4, जे भी कुछ ऐसा ही है जो इस खंड में अप्रत्यक्ष है कि मैं क्यों विश्वास करता हूं, तिमोथियस क्यों विश्वास करता है कि धर्मशास्त्र परमेश्वर के मुख से निकला है? अंत में तिमोथियस इस पर विश्वास करता है, अंत में तिमोथियस इस बात पर विश्वास करता है कि जो पॉलस कह रहा है वह सत्य है। अंत में तिमोथियस विश्वास कर रहा है कि धर्मशास्त्र परमेश्वर के मुख से ही निकला है। अंत में मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार विश्वास करता है कि धर्मशास्त्र परमेश्वर की ओर से ही आता है। हम विश्वास करते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर से हमसे बात करता है। कृपया इसे ध्यान से सुने, ये सभी विश्वास करने वाली बातों में एकदम सत्य है। किसी बात को असलियत में साबित करना कई बार असंभव होता है। इसका कोई मतलब नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं, किसी आस्तिक से या किसी नास्तिक से, संसारवादी से या आत्मिक व्यक्ति से। अंत में हम विश्वास करने का निर्णय लेते हैं क्योंकि हो सकता है आप इसे साबित ना कर पाए, परंतु बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। परमेश्वर साबित होना नहीं चाहता, वह चाहता है कि उस पर विश्वास किया जाए। भौतिकवादी वे लोग हैं जो कहते हैं कि प्रत्यक्ष संसार में बाहर भी बहुत कुछ है जो कि प्रभाव हम देखते हैं और प्रभाव के कारण को हम देखते हैं, वह सब इस प्रत्यक्ष संसार के अंदर ही है। आत्मिक चीज जैसी कोई वस्तु नहीं होती। इसे साबित करो, हाई स्कूल के अध्यापकों, इसे साबित करो, इसे साबित करो कि प्रत्यक्ष संसार के बाहर कुछ नहीं है। वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह विश्वास का मामला है। विकासवादियों ने उनकी मत को भी इस बात पर कोई शक नहीं है, यह एक सही मत है जो कि विकासवाद सिद्धांत के इर्द गिर्द बना हुआ है। वे सभी सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन इनके जवाब विकास विश्वास पर आधारित होते हैं। वे उसका इनकार करेंगे। आप उनसे पूछें कि सबूत कहाँ है, इस बात का सबूत कहाँ है कि घास का एक टुकड़ा जो कि 6 इंच का है और निर्णय लेता है कि वह बने रहने की खातर 10 फुट का पेड़ बनेगा, इसे साबित करो। आप नहीं कर सकते, यह असंभव है। विकासवाद विश्वास पर आधारित है, संसारवाद भी विश्वास पर आधारित है, भौतिकवाद भी विश्वास पर आधारित है, मानववाद भी विश्वास पर आधारित है। अब सवाल है कि कौन सा तरीका सही रीति से विश्वास की व्याख्या करता है। सीधे शब्दों में, मेरे पास इतना विश्वास नहीं है कि मैं नास्तिक बन जाऊं, और यह भी विश्वास नहीं कर सकता कि जो संसार नजर आता है वह अपने अर्थ और उद्देश्य में कुछ रसायनों के एक तालाब में इकट्ठे होने से अपने आप बन गया। मैं इस पर विश्वास नहीं करता, मेरे पास सिर्फ मसीह बनने के लिए ही विश्वास है। मैं धन्यवादी हूं, मुझे अपना दिमाग एक शेल्फ में रखने की जरूरत नहीं है। मैं धन्यवादी हूं जहां पर समर्थन करने वाले विवाद में है, लेकिन अंत में मैं और तिमोथियस इस बात पर विश्वास करते हैं कि धर्मशास्त्र परमेश्वर के मुख से ही निकला है, और मैं इसके लिए कोई क्षमा याचना नहीं करता, क्योंकि धर्मशास्त्र परमेश्वर की तरफ से है, इसलिए लाभदायक है। पॉलस इस बात को जारी रखता है कि धर्मशास्त्र परमेश्वर की ओर से है, इसलिए यह लाभदायक है। यह प्रेरणा की शिक्षा का आधिकारिक भाग है, एक तरफ यह धर्म सिद्धांत के लिए भी लाभदायक है। हम क्या सिखाते हैं और हम क्या ताड़ना देते हैं, धर्मशास्त्र इस बात की मांग करता है हम जो विश्वास करते हैं उस पर स्थिर रहें, और जो इससे अलग विश्वास करते हैं उन्हें ताड़ना दें। संसार बहुवाद का प्रचार करता है कि परमेश्वर तक जाने के कई रास्ते हैं, आप जो चाहे ले लो। बाइबल कहती है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। धर्मशास्त्र सिद्धांतिक त्रुटियों को दूर करने के आधार है। कई लोग कहते हैं कलीसिया ने जो गलत ही शिक्षा दे रहे हैं, वे सिखाते हैं स्वर्ग जाने के लिए आपको बपतिस्मा लेना ही है। धर्मशास्त्र हमारा अधिकार है सिखाने के लिए, ताड़ना देने के लिए, सुधारने के लिए, ये कहने के लिए कि इसमें सत्य नहीं है, क्योंकि विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी वजह से नहीं है, ये तो परमेश्वर का वरदान है। यह कार्यों की वजह से नहीं है कि कोई इस बात पर घमंड करे। धर्मशास्त्र लाभदायक है उन लोगों को सुधारने के लिए जो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र व्यवहार के लिए भी लाभदायक है, धार्मिकता में सुधारने और तैयार करने के लिए यह लाभदायक है। गैर बाबलीय व्यवहार का सामना करने के लिए, धर्म का जीवन बिताने के लिए, उत्साहना देने के लिए। संसार कहता है इसमें बस जाओ, संसार कहता है जो हम करते हैं वही करो, मॉल में आओ। पॉलस कहता है, ताकि तुम निर्दोष और बोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। फिलिपियों 2:15, संसार कहता है शुओ, संसार कहता है चखो, संसार कहता है अपने सिर कचरे के डिब्बे के साथ चिपका दो। बाइबल कहती है, जो बातें सुंदर, अच्छी, मन भावनी, शुद्ध, ग्रहण योग्य हैं, उन पर मन लगाओ, क्योंकि धर्मशास्त्र परमेश्वर के मुख से ही निकलता है। यह सिर्फ सत्य ही नहीं, यह आधिकारिक भी है कि उसके लिए जो हम विश्वास करते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, अंतिम परिणाम और अमल करना सक्षम, इन सब का अंतिम परिणाम है। पौलुस 17 में इसे समाप्त करता है, ताकि परमेश्वर का जन सक्षम और तैयार हो हर एक भले काम के लिए। परमेश्वर का जन परमेश्वर के दूत के लिए पुराने नियम का बाब है, और विशेष तौर पर जहां पौलुस तिमोथियस को परमेश्वर के जन और परमेश्वर के दूत के रूप में देख रहा है, उसी तरह से वह कहता है और अमल करने के लिए यह सत्य है कि सभी मसीही लोगों के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए भी है। धर्मशास्त्र हमें तैयार करने द्वारा हर एक भले कार्य के लिए सक्षम बनाता है। हो सकता है धर्मशास्त्र हमें छोटी सी बात ना बताए जो हमें जानना चाहते हैं। परमेश्वर के कुछ रहस्य भी हैं जो रहस्य ही रहने चाहिए, व्यवस्था विवरण 29:29, लेकिन फिर भी हमारे उद्धार के लिए धर्मशास्त्र पर्याप्त है। यह हमें सिखाता है कि हम कैसे उद्धार पाते हैं। पवित्रीकरण के लिए भी धर्मशास्त्र पर्याप्त है, क्योंकि यह हमें दिखाता है कौन से भले कार्य हमें करने चाहिए, और यह हमें सामर्थ्य भी देता है उन्हें करने के लिए। अनुप्रयोग, इस खंड में बहुत से अनुप्रयोग हैं जो बताए जा सकते हैं, लेकिन 2 के साथ इस सुबह के समय मैं बंद करना चाहूंगा। पहला, मुझे ये पसंद है कि तिमोथियस के पास सुसमाचार प्रचार करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। अध्याय 4:2, सुसमाचार का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। मेरे पास विचार अपने प्रचार करने का कोई बहाना नहीं है। एक विचार में संदेश तैयार करना एक साधारण सा काम है जो मैं करता हूं, क्योंकि पूरा सप्ताह मैं इस विषय पर नहीं निकालता हूं मैं क्या सोचता हूं, परंतु पूरा सप्ताह मेरा विचार यही रहता है कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता था जब उसने मुझे यह बात कही। संदेश तैयार करना मेरे लिए आसान है। अपनी आत्मा की पूर्ण क्षमता के साथ मैं वचन का प्रचार करूंगा। मैं परमेश्वर के विचारों के तुल्य अपने विचारों को नहीं रखूंगा। हो सकता है मैं कई बार अपने विचारों को पेश करूं, लेकिन उस वक्त मैं ऐसा जरूर करूंगा जैसे कि अगर मैं गलत हूं तो परमेश्वर से क्षमा चाहता हूं। यह मेरा आपके प्रति समर्पण नहीं है, ना ही यह किसी और का जो इस मंच पर खड़ा होता है, अगर असफल होते हैं तो आप उनको उनसे छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। मेरा समर्पण है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, लेकिन हर समय प्रचार करना, समय और असमय। इसका अर्थ है कि चाहे मैं वो बोलना चाहता हूं या नहीं चाहता, मेरे पास कोई चुनाव नहीं है, क्योंकि वह मेरे शब्द नहीं है। मैं अश्लीलता के बारे में बात करना पसंद नहीं करता, ये बेकार और भद्दा है, जहां तक ये बोलने में भी गंदा लगता है, लेकिन मुझे बोलना है, क्योंकि यौनिक पवित्रता बाइबल के महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। और यह समस्या है कि लगभग सभी सुसमाचारीय कलीसियाओं में यह पाया जाता है। मैंने बहुतों को देखा है और बेवकूफ नहीं हूं, मुझे ये बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे बोलना होगा, क्योंकि प्रभु यहोवा यही कहता है। लेकिन समय और असमय आपके लिए और मेरे लिए बात में भी लागू होते हैं कि हमने तो प्रचार करना ही है, चाहे आप सुनना चाहते हैं या नहीं। आप अंदाजा लगाएं, मेरा लक्ष्य आपको खुश करना नहीं है, मेरा लक्ष्य आपके कानों में गुदगुदी करना नहीं है कि मैं वही बोलूं जो आपको पसंद है, जो आप सुनना चाहते हैं। मेरा काम है परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, और इसके बाद आपकी इच्छा है, जो आप पर है कि आप और परमेश्वर के बीच की बात है। मेरा आपके प्रति समर्पण है, और यह इस खंड में से निकलने वाला एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। लेकिन यहाँ पर एक और अलग अनुप्रयोग बताना चाहूंगा, जो विशेष तौर पर पुरुषों के लिए। मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का जन पुरुषों और महिलाओं के लिए है, और बहुत खुश हूँ, सचमुच बहुत खुश हूँ इस कलीसिया में महिलाओं की सेवा देखकर। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ पर मंगलवार सुबह भी हों, ताकि आपको पता चले कि इस भवन में क्या होता है। भवन किसी भी सेवकाई के लिए, बढ़ोतरी के लिए हमेशा जगह होती है, लेकिन मैं विशेष तौर पर पुरुषों को चुनौती देना चाहूंगा। दूसरी बात, पुरुषों, मैं आपको चुनौती देता हूं कि वचन का प्रचार करो, परमेश्वर के जनों उसके वचन का प्रचार करो। अपने आप को परिवार का सिर बनाने के लिए चुना गया है, और आपको उन्हें प्रचार करना ही चाहिए। यही तो शिष्यता शुरू होती है। रात को खाना खाते समय उसके कामों का व्याख्यान करो, जिसने आपको अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। क्या आप खाने की मेज पर ऐसी बातें करते हैं? क्या मैं ऐसी बातें खाने की मेज पर करता हूं? क्या आप अपने बच्चों को अपनी भक्ति दिखाते हैं? क्या आप अपने बच्चों को अपनी प्रार्थनाएं सुनाते हैं? परमेश्वर के जनों, क्या आप उसके वचन का प्रचार करते हो, चाहे आप किसी भी हालात में हो? और पीछे अध्याय 2:2 में पॉलस लिखता है, जो तूने बहुत गवाहों के सामने सुना है, उससे विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे, जो आगे दूसरों को सुना सकें। परमेश्वर अभी भी विश्वास योग्य लोगों की तलाश कर रहा है, जिनको वह सुसमाचार का प्रचार करने के लिए सौंप सके, और उनके घरों में सुसमाचार का प्रचार होने के लिए, बच्चों को रविवार के स्कूल में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। हमारे पास कुछ ही पुरुष हैं जो रविवार के स्कूल में पढ़ाते हैं। क्यों? परमेश्वर के जनों उसके वचनों का प्रचार करो। फ्लाइट स्कूल में परमेश्वर के जनों उसके वचन का प्रचार करो। युवाओं से जुड़ने वाली क्लासों में इसे भाइयों की सेवकाई में करो। आपकी एक साथ एक वाली सेवकाई में करो। कौन इस चुनौती को लेगा? कौन मसीह के लिए हमारे नए भाइयों को प्रशिक्षित करेंगे? वे आ रहे हैं। कौन है जो हमारे नए जवान भाइयों का वचन का प्रचार करेंगे? बहुत से लोग देर तक शांत रहें। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि वचन का प्रचार करो।